राधा
बजाओ
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारे जमुना तीरा बनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा गाइए जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर स्तुति श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद के जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु श्री गौरांग श्री प्रभुपाद महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक है 19। असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम एव दुर्नयम् मत्वा जाति नृशंसानाम् नताम् व्यभजत् अच्युतः। असुराणाम सुधादानम् सर्पाणामिव दूर्नयम् मत्वा जाति नृशंसानाम् नताम् व्यभजत् अच्युतः। असुराणाम् सुधादानम् सर्पाणामिव दुर्नयम् मत्वा जाति नृशंसानाम् नतान् व्यभजद् अच्युतः। पढ़िए।
माता है
असुराणाम, असुरों का शुद्धादानम अमृत देना, सर्पाणाम सांपों का इव सदृश दुर्नयम अन्याय गलत अनुमान मत्वा इस प्रकार सोचकर जाति नृशंसानाम प्रकृति से अत्यधिक ईर्ष्यालुओं का ना नहीं ताम अमृत को व्यभजत भाग दे दिया अच्युतः भगवान श्री अच्युत। असुर स्वभाव से सर्पों के समान अत्यंत कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी योग्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। तात्पर्य, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर भी होते हैं। मंत्रौषधि वशः सर्पः खलः केन निवार्यते। सर्प को तो मंत्र औषधियों तथा जड़ी बूटियों से बस में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह बस में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारेण हरे कृष्ण। यत कीर्तनम यद बंदनम यद क्षणम यत स्मरणम यत श्रवणम यद अहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजन बहुत दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं समुद्र मंथन लीला का। इस लीला में दोनों पक्षों ने भाग लिया, एक पक्ष रहे असुर और दूसरे पक्ष रहे देव सुर। सुर और असुर, असुरों का स्वभाव भगवत गीता के 16वें अध्याय में 14 श्लोक में वर्णित है। 14 अविद्या का स्थान है 14। पुतना मरी थी चतुर्दशी के दिन, कंस भी मरा था चतुर्दशी के दिन, शिव जी का जन्म भी होता है शिव चतुर्दशी या शिव विवाह जो भी है, शिव का आगमन ही चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का आगमन भी चतुर्दशी। ये 14 वाला जो है, ये 14 का अर्थ होता है अब इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं स्थानों पे प्रकृति का निवास और अविद्या का निवास। इसलिए असुर सभ्यता जो है, आसुरी श्लोकों का वर्णन भगवद गीता में 14 श्लोकों में ही किया गया है, पढ़ लेना। तो एक तरफ असुर और एक तरफ सुर, दोनों ने मंथन किया, दोनों ने परिश्रम किया, खूब परिश्रम किया, मेहनत किया, और भगवान का सहारा भी मिला। और जब अमृत जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसमें से निकली, वैसे आगे आप लोग सुनोगे सागर से अमृत नहीं निकला, सागर मंथन से अमृत नहीं निकला, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं निकल सकता। आपको लगता होगा कि भाई आज तक तो हम सुनते आ रहे हैं सागर से अमृत निकला, लेकिन सागर से अमृत नहीं निकला। खैर हम कही देंगे सुमित्र बंधु माताओं, पर उसी वस्तु के लिए ये मंथन की क्रिया चल रही थी। सागर मंथन की क्रिया, बहुत सारी चीजें निकली। उच्च सर्वा अश्व ऐरावत हस्ती और भी ना जाने कितनी कितनी चीजें निकली, और लक्ष्मी जी भी निकली और अमृत भी। अमृत को लेकर के विवाद हुआ, और जिससे उस विवाद को मिटाने के लिए भगवान मोहन को मोहिनी बन के आना पड़ा। ये पीछे के श्लोक में भी हमने कहा था कि मोहन बने मोहिनी। यद्यपि भगवान को सदैव पुरुष लिंग से संबोधित किया जाता है, लेकिन यहां पर मोहिनी के लिए भी भगवान कहा गया। सबसे बढ़िया श्लोक है, गजेंद्र ने कहा इसी अष्टम स्कंध में, सवेना देवा सुरमर्त्य स्त्रियम न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु हो नायम गुण कर्म न सन न चासन निषेध शेषो जयतादशेष। भगवान के लिंग धर्म का निर्णय गजेंद्र ने किया, ना तो भगवान पुरुष है, ना तो भगवान स्त्री है, ना तो भगवान हिजड़ा है। कोई सोचेगा कि भगवान नपुंसक है, ना ना ना। सवैन देवा सुरमर्त्य स्त्रियम न स्त्री न षंडो, संस्कृत में षंड शब्द का अर्थ होता है हिजड़ा। तो गजेंद्र कहते हैं भगवान ना तो देवता है, ना तो नर है, ना किन्नर है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना हिजड़ा है, ना उनका कोई कर्म है। ये सारा निर्णय फिर निषेध शेषो जयतादशेष, ये सारी प्रकृतियां जब निषेध को प्राप्त होगी, जो अवशिष्ट बचेगा वो है परमात्मा का स्वरूप। कितना बढ़िया दार्शनिक तत्व है, फर्स्ट क्लास। इसी श्लोक पर कम से कम 2-4 दिन मनन करना चाहिए, तब पता चलेगा। भागवत के रसीला ग्रंथ और सबसे ज्यादा दार्शनिक सिद्धांतों से परिपुष्ट ग्रंथ है। सो मोहिनी आए, मोहिनी के लिए सदैव यहाँ भागवत में भाष्यकार रचनाकार वेदव्यास ने लिखा कि भगवान उवाच मोहिनी उवाच भगवान उवाच। तो यहाँ जब अमृत निकला और मोहिनी अमृत कलश को लेकर के आई, जब आई परंतु दोनों पंक्तियों में बिठा दिया, असुरों को बिठाया और दानवों को बिठाया, पर थोड़ी दूर दूर पे बिठाया और असुरों के पास जाकर के बढ़िया मंद मुस्कुरा करके उनकी तरफ देखा देखा और उनसे कहा, सुनो तुम लोग ब्राह्मण हो, देखने में सुंदर हो, बलशाली हो, ये देवता कायर है, नालायक है। उनको बहुत ही उनकी बढ़ाई की। आप देखेंगे एक श्लोक में लिखा हुआ है कि मोहिनी की बढ़ाई से वो चुप हो गए। ये मानवर्धा ऐसा कोई श्लोक है जिसके पास देखो भागवत होगा, इसी के आगे पीछे वाला श्लोक देखो भागवत में, बहुत मान से वो दब गए असुर लोग। खैर वो श्लोक हमको थोड़ा सा नहीं आ रहा है, देखिए देखेंगे कि मोहिनी ने बहुत कुछ उनकी बढ़ाई करी, या तो इसके पीछे चला गया होगा वो श्लोक है। मानवद्धा ऐसे ही के शब्द है, बहुमान बद्धा, यानी कि किसी की प्रशंसा करो ना, वो तुम्हारे प्रति झुक जाएगा पक्का। काम हासिल करना है तो उनकी खूब तारीफ करनी पड़ेगी। अब प्रभु पाद ने भी ऐसी बात करी, बोला जब गृहस्थों के पास जाएंगे तो खूब हाथ जोड़ करके कहेंगे प्रभु जो आप कहोगे सो सही है, ऐसी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि उनकी बातों को काटोगे तो वो तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। संसार में किसी की बात को काट दो नाराज होगा, मिला बहुमान बद्धा क्या पढ़ो तो हाँ बहुमाने न चावद्धा 23 नंबर बहुमाने न चावद्धा। तो बहुमान जब किए तो वो असुर बंदी हो गए, उनकी बातों को मानने लगे। बहुमान चावद्धा ये भागवत का प्रिंसिपल ध्यान रखना चाहिए। किसी से काम हासिल करना चाहते हो तो उसको खूब प्रशंसा करो, पत्नी के हाथ की सब्जी बढ़िया पाना चाहते हो ना तो खूब तारीफ करो उनकी, वाह तुम्हारी रसोई क्या बात है, ऐसी रसोई तो लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। सच में जैसे ही जाकर खाया था कभी, तो कह देने में क्या दिक्कत है। हाँ ये आगामी जो दशहरा को ना हम तुमको बनारसी साड़ी देंगे, ऐसा मत बोलना, तो खूब तारीफ कर देना जितना हो सके, झूठ मूठ का कोई भी तारीफ। संसार में किसी कारीगर और किसी रसोईया उसकी निंदा मत करना, कारीगर की निंदा करोगे तुम्हारी गाड़ी खराब कर देगा वो, और रसोईया की निंदा करोगे वो छोंक नहीं मारेगा, उबली हुई सब्जी खिला देगा। इसीलिए तारीफ है, भले ही तारीफ है काबिल ना हो पर काम हासिल करने के लिए तारीफ करना पड़ेगा, ये मोहिनी से सीखो, है ना। बहु माने ना चाबद्दा, और उनकी तरफ जो देखा उसके पूर्व श्लोक में उनकी तरफ जो देखा और बहुत कुछ फुसलाया, ये सारी बातें संक्षेप में वो सूत्र में लिखा हुआ है पर उसका अर्थ यही है। तो सारे असुर उनसे पट गए और स्त्री विवाद जुगुप्सया, और असुर लोग अभिमानी थे, उनने कहा स्त्रियों से झगड़ा करना बहुत बेकार बात है, ये सब कारणों से चुप हो गया। और मोहिनी ने पहले ही शर्त रख दी थी, देखो मैं एक अनजान स्त्री हूं, मेरे ऊपर भरोसा करना तुम जैसे ब्राह्मण बुद्धिमान वंशजों के लिए उचित नहीं है, हम एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री है। ना 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 जो तुम कहोगे, एक एक उस असुर कहते हैं देखो यार कितनी निष्पक्ष है यह, इनके भीतर अगर कपट होता है इस तरह से बात ये थोड़ी कहती, लेकिन हे कपटी मां, एक कहते ना चोर की किसके मुंह में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ठीक उन्होंने ऐसी बातें कही दी। तो असुरों ने कहा बिल्कुल ये सच्ची महिला है, इन्हें कह दिया अरे मेरे ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, पर सब भरोसा कर लिए। इतने में ठाकुर जी ने अपना काम बना लिया, बोले सुनो साधु असाधु हुआ, मैं सही बांटूंगी और सही नहीं बांटूंगी, इसमें हमारे ऊपर दोष नहीं देना, ना 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 बिल्कुल नहीं देंगे, जो तुम करोगे सो सही। तो मोहिनी ने सारी बातें अपने मनवा ली, क्यों नहीं मनवा लेंगे, जिनकी माया से सारा विश्व मोहित है, ऐसा कोई है जो भगवान को नहीं मानेगा, सब मानते हैं, जिनकी माया से मोहित है उनकी बातों को कौन टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं मनी मन, असुराणाम सुधादानम सर्पणाम एव दुर्नयम, ये असुरों को अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाना जैसा होगा। चाणक्य पंडित ने लिखा, ये प्रभुपाद ने जो श्लोक में लिखा है ना सर्प क्रूर, उसके पहले वाला एक श्लोक में पयोपान ही भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, सर्प का दूसरा नाम है भुजंग। सर्प को क्यों कहते हैं भुजंग, सर्प सर्पतीति सर्प, जो इसे सरकता हुआ चले उसको सर्प कहते हैं। अब भुजंग कहते हैं कि उनका जो हाथ हाथ तो नहीं है, हाथ पैर के सहारे से जैसे चलता है उसको भुजंग कहते हैं, ऐसे ही घसीटते हुए उसको भुजंग कहते हैं। सर्प का नाम चक्षुश्रवा है, वो नेत्रों से भी सुन लेता है। सर्प के ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होंगे, और कोई शब्द हैं, बहुत सारा चक्षुश्रवा भुजंग देख लेना है। सो वो पयोपानी भुजंगानम केवलम विषवर्धनम, यदि कोई व्यक्ति सोचे कि दूध से बढ़िया पुष्टि होती है, बहुत अच्छा होता है, दूध ही संसार में अमृत के समान है, अच्छा चलो चलो किंग कोबरा को पिलाते हैं, अहिराज, किंग कोबरा को हिंदी में कहते हैं अही, अही माने हाँ सर्प का दूसरा नाम है अही, अहिराज, सो अहिराज को पिलाते हैं, तो क्या सर्प को दूध पिलाने से उसका जहर कम होगा, होगा, सर्प बढ़िया मीठी मीठी बात करेगा ना। वयम खलाह, भगवान ने जब काली को मर्दन किया उसे पूछा काली बताओ तुमने ये दुष्टता क्यों करी, काली ने केवल नहीं कहा मैं खल हूं अहम खलाह, ऐसा नहीं कहा, काली ने कहा वयम खलाह, बोले हमारा पूरा खानदान बदमाश है। उसने सही बात कही, उसने नहीं कहा कि हम अकेले बदमाश है, बोला हमारा पूरा जो खानदान है वो पूरा बदमाश है। लेकिन प्रभु ये दोष हमारा नहीं है। बोले किसका है? बोले सुनो, दुनिया किसने बनाई? हमने बनाई। दुनिया में तीन गुण किसने दिया? बोले हमने दिया। बोले तमगुण की सृष्टि किसने की? बोले हमने की। बोले हमारे में तमगुण और क्रोध किसने डाला? बोले हमने डाला। बोले तेरा तुझको अर्पण में क्या लागे है मेरा? अब तुमने हमारे भीतर तमगुण रखा, रजगुण रखा, हमको क्रोधी बनाया, हमारे भीतर जहर डाला। अरे आपको जब डसने लगे आप कहे तो गलती हमारी है। प्रभु अच्छा बुरा जो करना है करो। देखो काली ने वरदान नहीं मांगा। वो एक ऐसा जंतु है भगवान के पास जाकर कोई झुकता है पर ये झुका नहीं आखिर तक। उसको लात मार मार करके झुका दिया बात अलग है, लेकिन उसका मन से नहीं झुका। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ यहां से तुम चले जाओ रमण फिजी में चले जाओ। सो बयम खला पयो पानी भुजंगानम, सर्प को दूध पिलाने से अच्छा नहीं बनेंगे। एक यहां पे देखिए सर्पाणाम, यहां असुराणाम सुधादान सर्पाणाम एवं दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसा नाम। ये सर्प कैसे? बोले जाति नृशंस है, माने बाई खानदान उसके वंश परंपरा से ये क्रूर है, जाति नृशंस। कई बार लोग जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है गुण कर्म विभाग सह, तो गुण कर्म विभाग जो है वो एक जन्म के लिए काम नहीं करता। गीता में आप देखेंगे जैसे पुष्प की गंध लेकर के हवा चलती है, ऐसे ही वर्तमान के गुण कर्म को लेकर के आत्मा चलती है। ए सर नो, हाँ या नहीं? शरीरम जदवापनोति जच्चापि उत्क्रामत ईश्वर गृहीत्वा एतानि संजाति वायुर्गंधा निवासयत। सब वर्तमान के गुण कर्म के आधार पर आगामी गुण कर्म का भी निर्णय होता है। बोले प्रमाण, नृग महाराज से, नृग जो गिरगिट बना था ना राजा, उससे भगवान ने पूछा तुम कौन हो? आपको पता है गिरगिट बन चुका है, फिर भी उन्होंने क्या कहा? अच्छा महाशय आप जानते हो दुनिया में जितने दानी है उनका नाम आपने पढ़ा है? भगवान श्री कृष्ण थोड़े नीचे गर्दन कर दिए। बोले ऊपर लिस्ट में जिसका नाम होगा ना दानियों में, मैं वो ही हूं, मैं नृग हूं। गिरगिट बन चुका है लेकिन उसका छत्र तेज अभी भी कायम है, राइट? सो जो कर्म अभी हम करते हैं, इसलिए भक्त जीवन में व्यक्ति बहुत सावधान होता है। जो पूर्व प्रारब्ध है जो है इसी समय सत्संग के आधार पर वो भागवत सुनता है, नाम जप करता है, करने से उसका संस्कार बदल जाता है ना। ये भाग्य को लेकर रोने वाला मनुष्य जन्म नहीं है ना। सबसे बेवकूफी वो है, मूर्खता है, भाग्य भाग्य कह करके पुकारना ना। ये मनुष्य जीवन केवल भाग्य भोगने के लिए नहीं है, यहां नया प्रारब्ध बनाने के लिए भी है। यू कैन क्रिएट योर न्यू प्रारब्ध, न्यू कर्म संस्कार बना सकते हैं जो आपके लिए आगे का होगा। हरिनाम जपने से तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, जो अभी है थोड़ा चलेगा, लेकिन नया संस्कार बना सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। इसलिए भाग्यवादी मत बनना। जाति नृशंस, भगवान यहां जाति शब्द कहा कि तुम्हारा जो खानदान है नृशंस क्रूर है। किंग कोबरा में एक कोबरा आज तक नहीं हुआ, कोई सर्प नहीं हुआ जो कि बढ़िया आकर के किसी के पिंजड़े में आकर के बढ़िया पालतू जानवर बन गया ना। कुत्ता बाई बर्थ ईमानदार है। आप देखिए कुत्ते को एक दिन रोटी खिलाओ वो तुम्हारे पीछे महीनों घूमेगा, बंदरों को महीनों रोटी खिलाओ एक दिन भी नहीं खिलाओ तुमको काट दे। बाई खानदान ये बेईमान है और बाई खानदान वो ईमानदार है कुत्ता। जाति नृशंस, भगवान ने गीता में कहा उसी 16वें अध्याय में, अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपद लेकर के जन्मे हो, है ना, अभी जातो से पांडव हे पांडव दैवी संपद। इसलिए मित्रों माताओं इन सब पर दुराग्रह मत करना, भागवत को ठीक से समझने से शंका मिटेगी। जाति को मानना उतना अच्छा नहीं है, पर जाति के आधार पर गुण कर्म निर्णय भी होता है ना। आप देखिए पुरुषोत्तम जलोटा गीत गाता था, उसका बेटा अनुव जलोटा गाने लगा। थोड़ा बहुत गुण कर्म आया कि नहीं आया? और हमने भी देखा, ये हमारे बैकुंठ पति एक कहा है, वो जो मृदंग बजाता है, वो खुद कहते हैं हमारे पिताजी एक बढ़िया मृदंग प्लेयर है। होता है। तो ये गुण कर्म के ऊपर हमको बहुत ही फोकस करना चाहिए। जाति नृशंस है, उनको नहीं देना चाहिए, जबकि दोनों ने परिश्रम किया था। इसलिए मित्रों, हम लोगों को जो भी संस्कार लेकर के हम लोगों ने जन्म लिया है, अब उसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब नए संस्कार हम डालेंगे। क्या नए संस्कार डालेंगे? हरे नाम जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब वो गया, अब नए संस्कार डालेंगे। पढ़ाई नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। देखो, संसार की उन्नति पढ़ाई से ही होती है, विद्वानों से ही होती है। किसी गांव में चले जाओ, जिस गांव में शिक्षितों की संख्या क्या कहेंगे, विद्वानों की संख्या ज्यादा है, वो गांव की तरक्की ज्यादा होगी। सफाई रहेगी, फैक्ट्री बसाएगा, वो करेगा, है कि नहीं? सब करेगा। नहीं तो गांव में मान लीजिए 50 लोग है, उसमें 50ों को 50 अनपढ़ है, तो गांव अनपढ़ माना जाएगा। कहीं भी संसार में देखो, तरक्की इसी से ही होता है। इसलिए जो संस्कार गया गया गया, पर आज से हम जबरदस्त भागवत पढ़ेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। खूब भागवत के श्लोक पढ़ेंगे, जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा वीर नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो गायन त्रयते, ये गायत्री है। गाने मात्र से तुम्हारा उद्धार, हरि नाम लेने मात्र से उद्धार, भागवत श्रवण मात्र से। जितने बड़े बड़े लोग हुए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, समय निकाल करके भागवत सुनते थे, आचार्य अनुगमनम। इसीलिए जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को भजे से हो, हरि को हो। इसलिए जो गया गया, पर इसका मतलब नहीं कि वही संस्कार में पुनः चलेंगे, नहीं, नए संस्कार डाल देंगे। इसलिए जाति नृशंस से जो है, भगवान ने देख लिया कि भाई ये बहुत क्रूर है, इनको नहीं पिलाएंगे। अच्युत विभाजत अच्युत, ये अच्युत शब्द से ये सिद्ध हो गया कि अच्युत उनको देंगे नहीं। यद्यपि दोनों ने मेहनत किया था, बल्कि असुरों ने ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मुंह के सामने रहे, मुंह के पास रहे, और जब खींचते थे तो धुआं जहर निकलता था, उनको ज्यादा मेहनत हुई, पर भगवान ने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? उनका नाम है अच्युत। अच्युत नाम से कैसे नहीं देंगे? देखो, अच्युत नाम से ही सिद्ध होता है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अच्युत शब्द की दो व्युत्पत्ति है। एक व्युत्पत्ति है न च्यवते स्वरूपात और गुणतश्चा, अथा स्वरूपतः गुणतश्चा च्युति भावात। स्वरूप से और गुण से जिनकी च्युति नहीं है, हम लोग च्युत हो जाते हैं अपने स्वरूप से। स्वरूप और गुण, आज हम सत्य कहते हैं, कल हम मिथ्या कहते हैं। स्वरूप, आज हमारा स्वरूप अच्छा है, कल हमारा स्वरूप एसिड अटैक से खराब हो जाता है। आज केस काले हैं, कल केस भूरे हो जाते हैं, है ना? आज बहुत बढ़िया है, कल कोई फोड़ा हो गया, ये चमड़ा तुमको देखने में नफरत आती है ना? ये हम सब च्युति युक्त है, पर भगवान अच्युत है, ना स्वरूप से च्युति। आप देखो, आदि पुरुष को लेकर कितना झमेला हो रहा है सिनेमा। सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दिए केवल आप लोगों की वजह से। आप लोग चुप बैठते हो, आवाज उठानी चाहिए। प्रजा का धर्म है, राजा अगर गलत करता है, प्रजा उसका आंदोलन करे। हम उस कोटि के भजनानंदी भक्त नहीं है, भजनानंदी भक्त सूरदास हुए, पर हम लोग तुलसी और चैतन्य कोटि के हैं। क्रांति है, समाज में कुछ गलत होता है तो आवाज उठाते हैं। आप लोग देखो, ये फिल्म जो है, चलचित्र हो नाटक हो, वो नाटक के चलचित्र के माध्यम से संस्कृति का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है। राम की मूछें आ गई, दाढ़ी नहीं आई, ये कैसी बात है भाई? राम जी कौन सा जिलेट ब्लेड लेकर गए थे जंगल में सेविंग कराने? हाँ, या तो बढ़े मूछें दाढ़ी, दोनों बढ़े, या तो बढ़े ना मूछें दाढ़ी,
ना बढ़े। राम जी को दाढ़ी मूछे क्यों बनेंगे भाई, सदा 15-16 के रहने वाले। श्री कृष्ण के दाढ़ी मूछे कभी जिलेट ब्लेड से उन्होंने सेव किया किसने देखा है? नहीं देखा। हनुमान की दाढ़ी है, उसकी मूछे नहीं है। बड़ी विचित्र चीज है। और उसी में जो डायलॉग है कि ब्राह्मण ने लिखा है, कितनी मूर्खता है। सनातन धर्म के रामायण जो आदि काव्य है, महाकाव्य, आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा आदि काव्य, उसके जो मुख्य हीरो है, नायक है, उनके साथ छेड़छाड़ है। और किसी का कार्टून थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पूरा विश्व गर्मा जाता है। अब पूरे 100 करोड़ सनातनी चुप बैठे, नहीं कुछ नहीं, उनके घर में आग लगी, हमारे घर में थोड़ी लगी। तेरे घर में आग लगेगी, तुमको कौन बचाएगा? इसलिए जिसके जितनी शक्ति है, हम लोग की शक्ति प्रवचन शब्द के माध्यम से हम प्रेषण करते हैं, दुनिया जागता है। इसलिए आप देखो अच्युत, वो स्वरूप से उनके च्युति नहीं है। दाढ़ी मुझे कैसे, यदि मनोज मुंतासिर को ये बात पता होती कि भगवान का नाम अच्युत है, वो कैसे बना देते कि मूछे हैं, दाढ़ी हटा देते? इम्पॉसिबल, असंभव है। अच्युत स्वरूप से भी च्युति नहीं है और गुण से भी उनकी च्युति नहीं। भगवान ने कहा आश्रित जनों को मैं रक्षा करता हूं, ये वचन दे दिया तो वचन दे दिया। हम तो वचन कई बार देते हैं, वचन तोड़ देते हैं, पर भगवान ऐसे नहीं करते। और दूसरी व्युत्पत्ति क्या है, बोले असौ एवं आश्रितान न च्यावयती थी अच्युतः। जो अपने आश्रित जनों को भी पतित होने नहीं देता उसका नाम अच्युत। सर कितना जबरदस्त व्युत्पत्ति है। बोले खुद की तो च्युति नहीं होती, और जो उनके आश्रय में जाता है, जो शरण में जाता है, उसको भी च्युति नहीं होती। न च्यावयती आश्रित आश्रितान इति अच्युता। आप लोगों को रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़े दिन पे हम लोग रामायण शुरू करेंगे। किष्किंधा कांड में बाली को जब आकर के सुग्रीव ललकारता है, बाली की पत्नी तारा उनको सलाह देती है। बाली पत्नी तारा कहती है, रामः परवला मर्दी ही युगांताग्नि रिबुद्धिता। हे नाथ, आप नहीं जानते हो, सुग्रीव को आपने अभी पीटा था, अभी गया था, जिनके हड्डियां चूर चूर हो गई, जिनके नस नस में दर्द उठ रहा होगा, वो 2-4 घंटे में आकर के दोबारा आपको ललकारता है सांझ के समय। कल सवेरे हो जाता, आ जाता, पर सांझ के समय आकर के क्यों आपको ललकारता है? नाथ, हमको यहां पर सुकून नहीं दिख रही है, यहां पर हमको अमंगल दिख रहा है। और सुग्रीव बड़ा बुद्धिमान है। ग्रीवा माने गला, सु माने अच्छा। सुग्रीव शब्द का अर्थ होता है बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विचारवान सुग्रीव। इसीलिए बिना आश्रय लिए दोबारा आपके पास नहीं आएगा आपको ललकारने। आप समझ जाओ, आप बलशाली हो, मैं आपकी पत्नी हूं, आपको कायरों की तरह हमारे इधर रखने के लिए हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी सलाह देना चाहते हैं कि आप एक राजा हो, राजा होने के नाते सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो, अभी जो पीट करके भागा था दोबारा क्यों आया? इसलिए नाथ, अंगद गया था गुप्तचर बन के, अंगद ने कह के देखा चाचा जी कि मित्रता दोनों जोगों से हुई है, और वो रघुवंशी है, एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण। और ये नहीं है राम कौन है, मान लीजिए बाली पूछेगा राम कौन है तारा, राम परबला मर्दी, बोले राम शत्रु पक्ष के बलों को मर्दन करने वाला है। और सुग्रीव बिना चेक किए, बिना परीक्षा किए कभी उनका आश्रय नहीं लिया होगा, कुछ ना कुछ टेस्ट किया होगा, और टेस्ट किया था, दुंदुभी को भेजा था और सप्तताल का भेदन किया था भगवान राम ने, तब सुग्रीव ने आश्रय लिया था। इसलिए राम पर भला मर्दी जुगांताग्नि रिवुत्थिता निवास वृक्ष साधुनाम, निवास वृक्ष साधुनाम अपन्नानाम परागति ही। बोले निवासभूत साधुनाम, साधुओं के लिए वो कल्प वृक्ष है, जैसे राही, जैसे पथिक वृक्षों के तले आश्रय लेता है, ऐसे ही साधुओं के आश्रय रूपी कल्प वृक्ष है भगवान श्री राम। रामायण आदि काव्य कितना सुंदर है, देखो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं निवास वृक्ष साधु नाम, यदि कोई साधु किसी वृक्ष के तले रहना चाहता है वो राम रूपी वृक्ष के नीचे रहे। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे रहेगा तो गलत करेगा, अश्वत्थ वृक्ष को तो काटना चाहिए। यहां संसार में दो वृक्ष है, एक है राम रूपी वृक्ष और एक है अस्वस्थ वृक्ष। नहीं, कई बार भक्त लोग वो गलत पढ़ते हैं, वो अस्वस्थ वृक्ष नहीं है। 15वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अस्वत्थम, अस्वस्थ नहीं है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानी यस्तम वेद सवेद वीत। अश्वत्थ शब्द का अर्थ होता है अ माने नहीं, स्व माने आगामी काल, थ माने रहना। जो वृक्ष आगामी काल तक न रहे उसका नाम है अश्वत्थ, अस्वस्थ नहीं। अब देख लेना जाए अश्वत्थ, तो ये वृक्ष को काटो और राम रूपी वृक्ष के आश्रय में रहो। ये वृक्ष है वृक्षम निवास वृक्ष साधु नाम, और क्या है आपन्ना नाम परागति। और हे बंधु, हे मित्र, हे बाली, हे कांत, हे नाथ, और जो आपत्ति में आ जाता है, विपत्ति में आ जाता है, उसके लिए परागति माने एकांत आश्रय स्थल है श्री राम। अर्थात विपत्ति में पड़ने के बाद तारा कहती है सखे हे पतिदेव, किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। हमारे 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 संस्कृति के लोग निंदा करते हैं, यहां एक स्त्री की जितनी बुद्धि है, लोग कहते हैं महिलाओं का ये नहीं। एक बाली की पत्नी तारा ने जो उपदेश दिया संसार में कोई नहीं दे सकता। तारा कहती है ये विपत्ति नाम आपन ना नाम परागति, परा माने श्रेष्ठ, गति माने आश्रय, गति गति माने आश्रय, गतौ गति माने जाना और गति माने आश्रय भी है। सो बोले श्रेष्ठ आश्रय है श्री राम, बोले राम के आश्रय के बिना और किसी के आश्रय में मत जाइए। हॉस्पिटल, पैसा, धन संपत्ति। और गजेंद्र भी में कहा नमी नमी नमामि मे आतुरम नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजाहाम, नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजाहा कुतक करिण्य प्रभवंति मोचितुम ग्राहेण पासेन विधातुराव्रतोपि अहम् तम यामि परम परायणम। गजेंद्र को उस क्षण में बुद्धि आ गई, बोले हमारी पत्नी हमारा उद्धार नहीं कर सकती, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम भगवान की शरण में जाएंगे। पर तारा की बात को नहीं माना। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आश्रित जनों को आश्रय देने वाले अच्युत जो देवतालों को उनके आश्रय में है, क्योंकि भगवान के आश्रितों को देव कहते हैं और भगवान से जो विरोध करने वाले उसको असुर कहते हैं। और भगवान अपने आश्रितों को अमृत ना पिला करके देवताओं को कैसे पिलाएंगे, इसलिए अच्युत शब्द से ही स्पष्ट हो गया कि भगवान असुरों को अमृत पिलाने वाले नहीं है। ये भागवत की राइट समझ है, अच्युत शब्द का यही अर्थ होगा। अच्छा दूसरी बात है, आप लोग कहोगे भाई दोनों ने तो मेहनत कर थी, भगवान ने कहा सम्मोहम सर्वभूतेषु, असुर भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं। पर आगे के श्लोक में परीक्षित महाराज जी से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव परीक्षित इति दानव दैतया नाविंदन अमृतम नृपः जुक्ता कर्माणि यत्ताश्च वासुदेव परांगमुखः। हे परीक्षित महाराज, ये दानव और दैत्य ये दोनों को अमृत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोले मिलना चाहिए था, युक्ता कर्माणी मंथन कार्य में ये लोग लगे, यत्न किए, यत्ताश्च, लेकिन फिर भी नहीं मिला क्योंकि परांगमुख वासुदेव से इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। अरे ये असुरों की बात तो सुनिए, छोड़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगला क्षमम न बिंदन्ते बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्या से, पुण्य कर्मों से ये तुम्हारा कल्याण मोक्ष होने वाला तुमको नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों देखो, ये शब्द से केवल इतना स्पष्ट हो जाता है कि भगवान उनको नहीं पिलाएंगे क्योंकि ये स्वभाव से दुष्ट है, बदमाश है। दूसरी बात है, जैसे सर्पों को दूध पिलाने पर जो उनका पालन करने वाला उनका हित नहीं करता, सर्प उन्हीं को डसता है, जो पिलाता है उसी को डसता है, इसलिए इनको पिलाना दुनिया के लिए हितकारी नहीं है। तीसरी बात है कि भाई मोहिनी ने पहले ही कह दिया कि भाई मैंने तो बात कर ली थी साधु साधु बा, मैं अच्छे से बांटू या बुरे से बांटू आपकी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई। जाति दाता के भी अनर्थ करते और पहले निश्चित। और चौथा कारण जो दिया एक आचार्य ने, उसने दिया कि हरिणा एवं अमृतम उत्पादितम, अतः अपने शरणागत भक्तों को ही देंगे। एक आचार्य का यह कहना है हरिणा एवं अमृतम उत्पादितम, बोले हरि ने ही अमृत को उत्पन्न किया, सागर से अमृत उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए हरि अपनी इच्छा से मेरा धन मैं जिसको दूंगा। और ये मित्रों माताओं सही बात है, सागर मंथन से अमृत नहीं निकलेगा। जैसे भजन करने से भगवान का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, इसको ठीक से समझिए। पूर्व दिशा में जाने से सूर्य का दर्शन नहीं होगा, हां पृथ्वी घूमती है इधर से उल्टा, जब हम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हैं सूर्य आसमान में है तब दर्शन होता है। जब भजन करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भागवत में निर्णय है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण स्वमातु स्विन गात्राया विश्रस्त कवर स्रज कृपयासित सुबंधन, मां का परिश्रम को देखा लेकिन ठाकुर जी मां के परिश्रम से नहीं बंधे, कृपया आसित अपनी कृपा शक्ति से बंधे, इसको ठीक ठीक से समझ लेना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नए श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, वहां जन्म नहीं हो रहा है। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा भगवत कृपा से वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये थोड़ी आध्यात्मिक भाषा है, आध्यात्मिक पाठ ऐसे ही है, इसलिए मोहिनी। अच्छा इसका प्रमाण गीता से हम करते हैं। गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है अंतिम श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान ने कहा है अर्जुन चार वस्तुओं का उद्गम स्थल मैं हूं। पहला नंबर क्या क्या है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्म का आश्रय भी मैं हूं। दूसरा क्या है, बोले अव्यय मोक्ष, बोले मोक्ष का भी उद्गम स्थल मैं हूं। और शाश्वत धर्म सनातन धर्म का भी आश्रय मैं हूं। और एकांतिक सुख माने भक्तिजन्य सुख का आश्रय भी मैं हूं। तो अमृत, अमृत शब्द वहां साफ साफ दिया गया, अमृतस्य च अव्ययस्य च, बोले अमृत जो मोक्ष रूपी अमृत है उसका उद्गम स्थल मैं हूं। हरि के बिना कहां अमृत मिलेगा, ये तो गीता का प्रमाण हमने दिया। वर्तमान आधुनिक काल में एक राजा था भोज, वो अपने मंत्रियों को बुलाया, बोला सुनो अमृत का नाम हमने सुना है और मैं सोचता हूं कि अमृत मिल जाए तो तुम भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे। हां मंत्रियों ने कहा बहुत बढ़िया है, पर अमृत मिलेगा कहां। तो एक मंत्री से पूछा, उसने कहा महाराज अमृत है, बोले कहां है, बोले सागर में, सागर में। तो दूसरे सागर से लाना भारी मुश्किल है। तो दूसरे मंत्री से पूछा, बोले कहां है, बोले अमृत चंद्रमा में है। तो तीसरे मंत्री से पूछा, बोले अमृत कहां है, बोले अमृत कहीं नहीं है, तुम्हारी प्रेमिका के होठों में है। बोले ये बहुत इजी है। तो चौथे से पूछा, बोले अमृत कहां है, बोले पाताल में है। पांचवें से पूछा अमृत कहां है, बोले स्वर्ग में है। ले गए थे सब देवता लोग, सबने सब कुछ बता दिया, चार पांच जगह बता दिया। उसको श्लोकों में निबद्ध किया गया, अवधौ विधौ फणिमुखे ना, अवधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसंती वै कवयो बदंती। यही जब चर्चा चल रही थी उसमें महाकवि कालिदास आए। कालिदास से महाराज ने पूछा, अच्छा आप तो बड़े विद्वान हो, आप ही बताओ अमृत कहाँ है। भगवान, हम चाटू करने वाला मंत्री नहीं है। आप लोगों को पता है अकबर के दरबार में बहुत लोग चाटुकार थे, पर एक भक्त था, उनका नाम था श्रीपति दास, श्रीपति या श्रीनिधि ऐसा कुछ था, जो कभी चाटुकारिता नहीं करता था। आप नहीं हो, दूसरे श्रीपति या श्रीनिधि पता लगा, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। वो अकबर की बिल्कुल चाटुकारी नहीं करता था साफ, और हमेशा उसको प्रथम पुरस्कार मिलता था हमेशा। और अंतिम समय जब पंडितों ने प्लान बनाया, उसने कहा अब तो मरूंगा, चाटू बिल्कुल नहीं करूंगा, तो भगवान का नाम जब करूंगा वो करूंगा। तो अकबर से जाकर कहा, अरे जब भगवान है तुम्हारे जैसे नालायक राजा की कौन प्रशंसा करे। तो जब फिर प्रथम पुरस्कार उनको मिला तो अकबर से कहा कि प्रभु देखो अब की बार पुरस्कार नहीं चाहिए। अब बोले क्या चाहिए? बोले अब की बार आप मुझे इस नौकरी से मुझे मुक्त कर दो, हम तो बांके बिहारी के पास जाएंगे, उन्हीं के गुणगान करके वृंदावन में रहेंगे। तो अकबर ने उनको रिहा कर दिया। सो चाटुकार मंत्रियों की यही बात, क्योंकि आदत पड़ जाती है बड़े लोगों के पास रहते रहते। तो अंततः कालिदास ने कहा, महाराज ये सब चाटुकार करते हैं। बोले क्या? तुम ही कालिदास बताओ कहां अमृत रहता है। कालिदास ने कहा, आपको जिस मंत्री ने कहा अवधौ, अब हम उसका खंडन करते हैं क्षारत। बोले यदि सागर में अमृत होता तो उनका जल लवणाक्त तक खार कैसे होता, खारा कैसे होता? इससे सिद्ध होता है कि सागर में अमृत नहीं है। तो बोले दूसरा कहता है चंद्रमा में है। बोले चंद्रमा में यदि अमृत होता क्षयत, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय क्यों होता है? इससे सिद्ध होता है कि चंद्रमा में अमृत नहीं है। बोले तीसरे मंत्री ने कहा था बधुमुखी माने तुम्हारी पत्नी अथवा तुम्हारी प्रेमिका के होठों पे है। बोले यदि प्रेमिका अथवा पत्नी के होठों पर अमृत होता उसके पति क्यों मर जाता, वो विधवा क्यों हो जाती? इसका मतलब होता है उसके होठों में अमृत नहीं है। क्षारात क्षयात पतिमृतात पतत्वात। बोले स्वर्ग में यदि होता तो स्वर्ग के देवता क्षीणे पुण्य मत्स्य लोकम भी संत यहां क्यों आ जाते? और गरलत्वात, सर्पों के निवास पे अगर अमृत होता तो उनके मुंह से गरल कैसे उत्पन्न होता, जहर कैसे उत्पन्न होता? यूं कह करके पांचों स्थान को काट दिया, क्षरात क्षयात पतिमृतात पतत्वात गरलात। तो फिर कालिदास ये बताओ ना कहां है अमृत। तो कालिदास ने कहा कंठे सुधा बसती वे भगवत जनानाम। हे राजन, ये अमृत ना तो स्वर्ग में है, ना तो पाताल में है, ना तो चंद्रमा में है, ना तो तुम्हारी प्रेमिका के होठों पे है। केवल केवल अमृत तो भगवान के भक्तों के कंठ में ही है। क्यों? क्योंकि अमृत के स्वरूप है भगवान श्रीहरि, और उस श्रीहरि को कंठ में बिठा करके भक्तजन दूसरों के पास परिवेषण करते हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवन। अमृत स्वरूप भगवान श्री अच्युत की जय। इसलिए सागर भागर में कोई अमृत नहीं, इस भ्रम में मत पड़ो, अमृत तो भगवान ही लेके आए। अच्छा देखो, दो केसेस में आप देखिए, अमृत कलश किसके हाथ में था? हाँ जी, हाँ, ये मंथन भंथन से नहीं, वो तो धन्वंतरी के हाथ में ही कलश था। दो अवतार में देखो, मोहिनी के हाथ में और धन्वंतरी के हाथ में। ये भ्रम में मत पड़ो कि ये मंथन करोगे तुम्हारा अमृत मिलेगा, ना ना ना। यहां सागर मंथन की लीला इसलिए दिया गया कि यहां मेहनत तुमको भजन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान तो मिलेंगे। यम एवेश व्रणुते, वो जिसका वरण करेंगे उन्हीं को ही वो प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, ये जो आत्मा है, ये जो भगवान है, ये हमेशा आश्रित जनों का हित करते हैं। और उन्होंने विचार किया कि नहीं, इनको नहीं पिलाना चाहिए। इसका एक उदाहरण है लंका का उदाहरण। रामायण में हनुमान जब जाकर के लंका में पहुंचते हैं, सबसे पहले कौन मिला? लंकिनी मिली। लंकिनी क्या कहती है? नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदेरी। अरे 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 अरे, मैं लंकिनी हूं और लंका की रखवाली करने वाली मैं हूं, और मेरा निरादर करके तू चल रहा है। जान ही ना ही मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे चोर, तुम मेरे आहार बनोगे। बताओ, जिसने दूसरे की स्त्री का अपहरण करके लिया, उसी के राज्य में ये रखवाली कर रही है, माने चोर के धन की रखवाली कर रही है, और जो सच्चे संत हनुमान जी है उसको कहती है ये चोरा। तो क्या लंकिनी को लेकर के बढ़िया साड़ी और दूध पिलाना अच्छा रहेगा? तुम ही विचार करो। भगवान ने न्याय अन्याय किया, ये बात छोड़ो जनाब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप छोड़ो माता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लंकिनी के लिए बढ़िया साड़ी लेकर जाओगे लंका? हाँ भाई, रावण की तुम सेवा करती हो, क्या बात है, फर्स्ट क्लास है, उनके लिए नथ लेके जाओगे? ना, मुष्टिका एक महाकपिहनी। हनुमान ने देखा कि ये वही बात है चोर की दाढ़ी में, तिनका। अरे चोर की तुम चोरी कर रहे हो, रखवाली कर रहे हो, और तुम सत्य न्याय का विज्ञापन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, हाय हाय विधाता। तो भगवान राम के दूत ने सोचा कि ये बड़ा बड़ी बेकार महिला ये है, तो एक मुक्का मारा। देखो भगवान ने भी मंगलाचरण ताड़का से ही किया, पुतना से ही किया, और लंका प्रवेश में भगवान राम के भक्त ने भी मंगलाचरण लंकिनी से कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। ये दुष्टा जो है, इनका दंड, इनको तो दंड मिलना चाहिए। मारा, जब खून बमन किया, रक्त बमन किया, तब उसकी बुद्धि आ गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन हरिकर दूता। हे तात, आज आपका जैसा सत्संग हमको प्राप्त हुआ ना, ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। सत्संग कैसा मिला? मुक्का। तात स्वर्ग अपवर्ग कर धलो धरव तूल एक अंग, तूल नता ही सकर मिली जोल सुख लव सत संग। हनुमान ने कौन सा सत्संग किया? न जायते मृयते वा कदाचिन, गीता का श्लोक थोड़ी पढ़ा। हनुमान ने क्या किया? एक मुक्का मारा, मुष्टिका एक महाकपि हानि। हाँ, सच में वही सत्संग है। साधु अगर गाली भी दे, साधु अगर मुक्का मारे, लंकिनी पे ये भाव अच्छा है, यही सत्संग है, यही सत्संग है। इसलिए हम लोग को विचार करना पड़ेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तुम्हारे पिताजी शराब पीते हैं, तुम्हारे पिताजी मदिरा पान करते हैं, तुम्हारे पिताजी भगवान का भजन नहीं करते, पर तुम घर छोड़ के अगर भजन करते हो, तुम सही करते हो कि गलत करते हो? सही करते हो। इसलिए महाभारत में निर्णय आया है, ना सत्यम सत्यमित्या हो, ना सत्य वचनम रसा, यद आत्यंतिक भूत हितम तत् सत्यम कवयो विदु हो। भीष्मदेव कहते हैं, सुनो, बोले सत्य असत्य की परिभाषा तुम निर्णय नहीं करोगे, बोले हम करेंगे। बोले क्या है? बोले असत्य वचन हमेशा असत्य नहीं होता, और सत्य वचन हमेशा सत्य नहीं होता। बोले बोले सत्य और असत्य में क्या भेद क्या है? बोले सुनो, सत्य वचन सत्य क्यों नहीं होगा? बोले कोई व्यक्ति किसी को मारने आया है, कोई व्यक्ति किसी गोवध करने के लिए कसाई दौड़ रहा है, और तुम्हारी कुटिया में गो माता रक्षा के लिए प्रविष्ट हो गई, घुस गई, और तुम कसाई को कहोगे आओ महाराज, तुमने 10,000 रुपया 20,000 रुपया देके गाय खरीदी थी, और तुम्हारे जो गाय हमारे कुटिया में है उसको लाओ काटो लो, ये ठीक रहेगा? वहां पर झूठ बोलना ही परम पुण्य होगा। नहीं महाराज, हमने देखा नहीं, कोई गया तो यहां आई नहीं कभी, वहां झूठ बोलना चाहिए। इसलिए महाभारतकार वेदव्यास लिखते हैं, ना सत्य वचनम सत्यम, सत्य हमेशा सत्य नहीं, ना सत्य वचनम रसा, और असत्य हमेशा असत्य नहीं है। यहां पर असत्य ही ठीक है। तुम्हारे पति तुमको सत्संग जाने के लिए रोकते हैं, तो वहां क्या कहे के आओगे? कहोगे एक काम करो, वो बाहुबली पिक्चर है ना, वो हम देख के आ जाते हैं, ये फिल्म देखने कहे के चले जाओगे और सत्संग में आओगे? इसमें कोई झूठ में कोई दोष नहीं, यही झूठ कहने लायक है। बोले क्या? जत आत्यंतिक भूत हितम, जिससे जीवात्मा का परम कल्याण हित है। आत्यंतिक हित क्या है? आत्यंतिक हित है भगवान की भक्ति। एकांत लाभ हो बचसनो पुनसाम, सुश्लोक मौलिर गुणवाद माहो। सो भगवान की भक्ति के लिए यदि तुम संसार में सबको परित्याग कर सकते हो, सबको झूठा साबित कर सकते हो, यही परम सत्य है। वेद अभ्यास ने निर्णय किया। इसलिए जो परम सत्य मोहिनी आज है वो असुरों को कैसे दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। इसलिए इन सब कथाओं से हमको यही सीखना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कहां पर हमको किसके पक्ष लेना चाहिए, किसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। भगवान सम है वो इतने विधर्मी नहीं हो सकते कि रावण वो सुग्रीव को बाली पीटेगा और ये चुपचाप रह जाएंगे। ना 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 ना, ना वो बालीवध करेंगे और रावण बस सीता का अपहरण करेगा, रावण को छोड़ देंगे। ना, ये कोई धर्म है? ऐसे धर्म कोई ऐसे भगवान के शरणागत कौन होगा? अब कोई होगा चाहे होगा, हम तो नहीं होंगे। ऐसे भगवान, ऐसा नालायक भगवान के शरण में कौन जाएगा जो अपने शरणागत की रक्षा ना कर सके? नहीं, हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। हमारा शास्त्र पक्का प्रमाण कर देता है, नहीं भगवान देखिए उनका विचार कैसा है, बिल्कुल कहते ना 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 भुजंगा नाम पयोपान केवलम विश्ववर्धनम। इसीलिए एक एक श्लोक में अनंत अर्थ रहता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री वृंदावन धाम में आए हो और जीवन में सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो। सही में हमारा अनुभव, हम देश दुनिया घूमते हैं, अनुभव करते हैं, भागवत के प्रति जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा सबके मन में नहीं है। ये वृंदावन में रह करके भी ना सबके मन में इच्छा नहीं होगी। इसलिए वेदव्यास कहते हैं मानवत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष प्रसंग, ये त्रयाणाम दुर्लभम एतत्। ये तीनों दुर्लभ है। मनुष्य जन्म ले लिया तो क्या हो गया? वृंदावन आ गए तो क्या हो गया? बोले ना ना, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इससे क्या होगा? बोले मुमुक्षा होनी चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा, भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। और तीस पर महापुरुष का प्रसंग, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए और संग में भागवत नाम पूजा आदि की चर्चा हो जाए, कितनी बढ़िया बात। अब हम वल्लभ विद्यानगर गए थे, वहां मंदिर बन रहा है, तो हमसे जब प्रोजेक्ट करके दिखाए, हमसे सलाह मांगे, मैंने कहा देखिए भागवत में जो लिखा हुआ वही हम बोलेंगे। कल परम पूज्य गोलकानंद महाराज जी भी पूछ रहे थे, हमने उनको दिखाया था, भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है मद अर्चाम संप्रतिष्ठाप्य मंदिरम कार्यते दृढ़म, माने मेरे भक्तों को मेरी अर्चा की प्रतिष्ठा करने के बाद दृढ़ माने पत्थर का मंदिर बनवाना चाहिए। दृढ़म माने ऐसे दृढ़ता से मंदिर बनवाना चाहिए कि लंबे समय तक के लिए चले, पब्लिक आएगी, पब्लिक की जगह है, तोड़ फोड़ ज्यादा ये करना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा है मंदिरम कार्यत दृढ़म, और मैं आपको श्लोक क्रमांक बताता हूं, भागवत एकादश स्कंध अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 50 देख लेना, दृढ़ मंदिर होना चाहिए। तोड़ फोड़ टूटा फूटा हमेशा के लिए ये कृष्ण सपट नहीं करते। इसलिए भागवत एक महान ग्रंथ है, उसका अध्ययन अध्यापन सनातन गोस्वामी दिननाथ करते थे, दो टीकाएं लिख ली। इसलिए मित्रों खूब पढ़ो, खूब भागवत के मन लगाओ, भागवत में मन लगेगा तो नाम में मन लगेगा, दोनों। देखो कभी भगवान की अर्चा पूजा कर लीजिए, फिर पूजा में थोड़ा मन हटा तो जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर नहीं होगा तो फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, फिर थोड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सो जाएंगे, फिर जपेंगे, फिर पढ़ेंगे। बस इसी तरह से हमारा जीवन अतिवाहित हो जाए, यही भगवान श्री राधा श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों में हमारी विनित प्रार्थना। हरे कृष्णा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे क्लास में प्रश्न पूछने का टाइम नहीं मिलता, और मेरे ख्याल में इतना प्रश्न होने की कोई संभावना भी नहीं है, ऐसी कोई बात हम नहीं कहते जो प्रश्न लाइक हो। यदि कोई प्रश्न है तो हमारे ऑफिस पीछे है, जहां प्रसाद बट रहा है वहीं आ जाना, तो आपका उत्तर हम दे देंगे। हरे कृष्णा।